अच्छा, आज जो सर ने तुमसे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पर पूछा था ना, वो तुमने बिल्कुल सही बताया था। उसमें बिल्कुल चार उसमें चार पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट उसमें ये होता है कि रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ फीवर एंड जनरल मैलीज होगा, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू उसमें होंगे कि मल्टीपल आइसोलेटेड स्टेराइल पस्ट्यूल्स नज़र आएंगे क्लिनिकल। लैब अबनॉर्मलिटीज़ के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस, लिम्फोपीनिया, रेस्ड ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन और कोकोज स्पॉन्जीफॉर्म पस्ट्यूल्स नज़र आएंगे द हिस्टोपैथ। यानी कि दो पॉइंट्स जो है ना हमारे पास क्लिनिकल है, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ फीवर एंड मेलीज, मल्टीपल स्टेराइल पस्ट्यूल्स ऑन द स्किन, लैब्स में ल्यूकोसाइटोसिस, लिम्फोसाइटोपीनिया, रेस्ड ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन और हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर जो है ना वो हमें कोकोज स्पॉन्जीफॉर्म पस्ट्यूल्स नज़र आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि दो इसमें ग्रुप्स हैं जो मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया बताया था कि या तो पस्टुलर सोराइसिस जो है वो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सोराइसिस, वो क्रॉनिक प्लाक सोराइसिस हो या एक्रोडर्मेटाइटिस कंटिन्यू ऑफ हेलोपी हो, बिकॉज ऑफ सम प्रोवोकिंग फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड विदड्रॉल, साइक्लोस्पोरिन विदड्रॉल जो इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, या फिर ये जो है ना डीनोवो अराइज कर सकता है ऑन इट्स ओन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास फेट ये है कि इसमें अगर अर्ली ट्रीट करें तो रिमिशन हो सकती है, लेकिन अगर जो है ना सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है और बहुत ज़्यादा सिवियर केस है तो उसमें जो है ना वो डिटोरिएशन हो सकती है, डेथ भी हो सकती है और रिलैप्स भी हो सकता है। देन फिर हमारे पास जो है ना बाकी जो इसकी टाइप्स है ना, बाकी थ्री टाइप्स ऑफ जनरलाइज पस्टुलर सोराइसिस वो इसी से मिलते जुलते हैं। उसके अंदर कुछ जो है ना चीज़ें याद रखनी है, फॉर एग्जांपल सब अक्यूट एनुलर जनरलाइज पस्टुलर सोराइसिस के अंदर एज द नेम शोज़ की ये जो है ना एनुलर लेजन्स के फॉर्म में आता है, एनुलर एरिथेमेटस प्लाक्स बनते हैं और वो जो है ना सेंट्रीफ्यूगली स्प्रेड करते हैं और स्प्रेड करने के साथ साथ उसके एडवांसिंग एज के ऊपर जो है ना स्टेराइल पस्ट्यूल्स अपेयर करते हैं जो जब ड्राई हो जाते हैं तो फिर उनमें उनकी डेसिकेशन होती है। तो ये बिल्कुल जो है ना इसकी अपेयरेंस किस तरह लगती है, एरिडेमा एनुलारी सेंट्रीफ्यूगम की तरह लगती है, ठीक है। इसमें कोई सिस्टमिक सिम्टम्स नहीं होते और इवन के इसके अंदर जो है ना वो कभी कभी लीनियर फॉर्म्स भी आ सकते हैं, ठीक है। और इसकी प्रोग्नोसिस जो है ना वो बेटर है देन द अक्यूट जनरलाइज पस्टुलर सोराइसिस या वॉन जंपुश टाइप की। ये वाली जो कॉमन जो प्रेजेंटेशन है ना वो बच्चों में इन्फेंसी में ज़्यादा कॉमन है। आगे जब हम पढ़ेंगे ना कि इन्फेंटाइल और जुवेनाइल उसमें यही वाली प्रेजेंटेशन आती है। फिर अक्यूट जनरलाइज पस्टुलर सोराइसिस ऑफ प्रेगनेंसी जिसको हम इम्पिटाइगो हर्पेटिफॉर्मस भी कहते हैं, वो भी एक रेयर एंटिटी है और ये जो है ना सिर्फ प्रेगनेंसी में आती है या यूजुअली लास्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में आती है, लेकिन जो है ना वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी आ सकती है, फर्स्ट डे परप्यूरम पे भी आ सकती है। और जो प्रेगनेंसी में आती है तो ये डिलीवरी के साथ जो है ना वो के साथ बिल्कुल ठीक हो जाती है और सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज के अंदर भी आती है। इसका प्री साइट ऑफ प्री डायलेक्शन जो है ना वो ज़्यादातर फ्लेक्जुरल साइट्स हैं, दैट इज़ द इंग्वाइनोजेनाइटल रीजन, और उसके बाद ये फिर ना स्प्रेड हो सकता है। जो इंग्वाइनोजेनाइटल रीजन है वो पहले इन्फ्लेम्ड होगा, उसके बाद पस्टूल्स आएंगे, ठीक है, जो ड्राई होंगे और फिर उस पर एक्सफोलिएट कर लेंगे वो स्किन। जब इनकी हीलिंग होती है तो फिर इट लीव्स पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, टंग, बकल म्यूकोजा, इवन एज फिगस भी इन्वॉल्व हो सकता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है ना वो जब जितनी ज़्यादा सिवियर होगी उसके साथ से कंस्टिट्यूशनल सिम्टम्स आएंगे और सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है। और इसके अलावा ये बेबी को भी इन्फेक्ट करता है क्योंकि अगर बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है और सिवियर है तो फिर वो प्लासेंटल इनसफिशेंसी करता है, स्टिल बर्थ और न्यूनेटल डेथ या फीटल एब्नॉर्मलिटीज़ कर सकता है। तो जो है ना ये तब तक परसिस्ट करता है टिल द चाइल्ड इज़ बॉर्न, और इसी वजह से अगर बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग अटैक हो तो उसमें हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अर्ली डिलीवरी भी कर सकते हैं।